फिलहाल। दूसरी ओर आदित्य अपने कमरे में तो आ गया था, लेकिन जिस तरीके से वो झलक के कमरे में गया था और उसने उसे इनरवेयर में देखा था, तो कहीं ना कहीं उसका दिल एक बार फिर उछलने लगा था। लेकिन अभय के उस वक्त वहां जाने पर उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। वो सोच रहा था कि कल सुबह अभय से बात करेगा और सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन बार बार झलक का चेहरा, उसका खूबसूरत मुस्कुराना और उसकी बातें उसकी आंखों के सामने आने लगी थीं। जिस तरह से आज वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक दूरी थी जो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, तो उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज सारे बंधन टूट जाते और वो हमेशा के लिए झलक के साथ एक हो जाता। लेकिन फिलहाल वो कभी उठकर बैठ जाता तो कभी दोबारा लेट जाता। उसका दिल बेकाबू होकर चल रहा था। दिल कर रहा था कि झलक के पास जाए, उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सो जाए और झलक उसे समझकर उसके साथ वक्त बिताए। इस वक्त आदित्य को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक समय पर ये एक ऐसा खड़ूस बिजनेसमैन था जिसके सामने आज तक कोई लड़की नहीं टिकी थी, लेकिन आज यही बिजनेसमैन एक लड़की को पाने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरी तरह से बेताब था। दूसरी ओर झलक भी सोने की कोशिश कर रही थी और आदित्य के बारे में सोचकर मुस्कुरा दी थी। फिलहाल जल्दी ही खूबसूरत सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ खुराना अपने अपार्टमेंट में बेसुध होकर पड़ा हुआ था। चारों तरफ उसके अपार्टमेंट में शराब की बहुत ही तेज बदबू फैली हुई थी। फिलहाल रणविजय खुराना जल्दी ही तैयार होते हुए सिद्धार्थ के अपार्टमेंट में पहुंच गया था, क्योंकि जब से क्लब में सिद्धार्थ ने रणविजय की साइड ली थी और झलक को लेकर आगे बढ़कर उसका साथ दिया था, कहीं ना कहीं रणविजय के मन में सिद्धार्थ को लेकर जो भी गुस्सा था वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया था। हालांकि एक मलाल अभी भी उसके मन में बाकी था, लेकिन फिलहाल दादी ने उसे आदेश दिया था कि वो सिद्धार्थ को लेकर आए और फटाफट से उसे तैयार करवाए, क्योंकि सिद्धार्थ ने जिद पकड़ ली थी कि वो आकांक्षा से शादी करना चाहता है, तो उसकी तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ की सगाई नहीं बल्कि शादी करने का फैसला था और सिद्धार्थ ने साफ साफ कहा था कि वो आकांक्षा से ही शादी करेगा। दादी के लिए फिलहाल सिद्धार्थ की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। वैसे भी उनका सब लोगों से भरोसा टूट चुका था, इसलिए दादी बस जो हो रहा था उसे होने देना चाहती थी। जब पूरी रात सिद्धार्थ घर नहीं आया, तब दादी ने रणविजय से कहा था, रणविजय जल्दी से पता लगाओ सिद्धार्थ कहाँ है, आज शाम को उसकी हल्दी होनी है और उसकी सारी तैयारियाँ तुम्हें ही देखनी है। तुम तो जानते हो कि हमारा दिल और दिमाग अभी पूरी तरह से काबू में नहीं है। अभी हमें इस मल्होत्रा परिवार की क्या कहानी है इसके बारे में पता लगाना है। हमने अपने कुछ आदमी उस परिवार पर नज़र रखने के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं लग पाया है। तो तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, सिद्धार्थ को लाने की जिम्मेदारी और उसकी तैयारी करवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारी है। दादी की बातें सुनकर रणविजय एक पल के लिए चौंक गया था, लेकिन दादी ने जिस तरीके से उसे जिम्मेदारी दी थी तो कहीं ना कहीं उसका दिल हल्का फुल्का हो गया था। वरना उस स्टेज वाले हादसे के बाद जब झलक ने उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रख दी थी, तब से दादी रणविजय से पूरी तरह गुस्से में थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह से आदेश देते देख कर कहीं ना कहीं उसके मन को सुकून मिला था और रणविजय गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला था, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें इस तरीके से मेरे बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मेरे प्लान के बीच नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अनामिका, तुम्हें तो मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। कुछ सोचकर उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा, उसी चेहरे पर जहां झलक ने गुस्से में तमाचा मारा था। वो गुस्से से बेचैन होकर बोला था, वैसे भी मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारे करीब आना चाहता था। इनफैक्ट उस गांव में बिताया हुआ तुम्हारे साथ एक एक पल मुझे अच्छी तरह से याद है। उस गांव में तुम मेरे काफ़ी करीब आ गई थी। तुमने मुझे गरीब और अपाहित समझकर मेरी काफ़ी मदद की थी और शायद यही कारण था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें हर हाल में सजा दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है। मन में ये बोलकर सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर गया तो पूरे अपार्टमेंट में चारों तरफ शराब की गंदी बदबू फैली हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सच में झलक से नफरत करता है तो फिर इस तरह लगातार शराब पीने का क्या चक्कर है, और वैसे भी कल रात उसने अपनी नफरत का ही तो झलक के सामने इजहार किया था, तो इतनी ज्यादा शराब पीने की क्या जरूरत थी। उसे होश में लाने के लिए रणविजय ने एक पूरा भरा हुआ ठंडे पानी का जग उठाकर उसके ऊपर उड़ेल दिया। अब सिद्धार्थ गुस्से से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया और आंखें मसलते हुए बोला था, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी डालने की, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रणविजय ने उसे जवाब देने के बजाय रणविजय ने सिद्धार्थ को उठाया और उसे सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया था। फिर उसकी तरफ गंभीरता से देखते हुए बोला, देखो सिद्धार्थ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। आखिरकार जिससे तुम प्यार करते हो उसे किसी और के साथ देखना वाकई बहुत तकलीफ देह हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को इस तरह शराब में खत्म कर लो। तुम इस तरह लगातार खुद को बर्बाद करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मौत तुम्हारे बेहद करीब आ जाएगी। अब ये सुनकर अचानक सिद्धार्थ पहले तो उसकी ओर देखने लगा और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगा था। वो रणविजय के चारों ओर चक्कर काटते हुए बोला था, वाह तो तुम यहाँ मुझे प्यार पर भाषण देने आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने जब तुम्हारी थोड़ी बहुत साइड ली थी तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए भाइयों वाला प्यार जाग गया हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो कुछ भी किया उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई खास स्पेशल प्यार मोहब्बत नहीं है, ना ही भाइयों वाला प्यार, समझे तुम। इसलिए अपनी सोच, अपनी समझ और साथ ही साथ अपनी ये नसीहतें अपने ही पास रखो। जैसे ही सिद्धार्थ ने पूरी तरह गुस्से में ये कहा, रणविजय पूरी तरह शांत रहा। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला था, तुम जानते हो मैं इस वक्त यहाँ तुमसे भाइयों वाला प्यार लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ दादी के ऑर्डर से आया हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, और जान लो मैं भी कोई खास लगाव तुमसे नहीं रखता हूँ। लेकिन तुम शायद एक बात भूल रहे हो, इस वक्त तुम्हारे सामने झलक खड़ी हुई है और उसके साथ खड़ा है बिजनेसमैन मिस्टर आदित्य राणा। आदित्य राणा के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम भले ही बिजनेस में किसी के मामले से मतलब ना रखते हो, लेकिन आदित्य राणा भी कुछ कम हस्ती नहीं है, और झलक ने जिस तरह से मल्होत्रा परिवार का सहारा लिया है तो जरूर कुछ न कुछ बात है। अगर मल्होत्रा परिवार और साथ ही साथ राणा परिवार झलक के साथ है तो वो हमसे ताकत में, पावर में और प्रभाव में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तभी सिद्धार्थ जहरीली हंसी हंसते हुए बोला था,
मुझे उसके चरणों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की की हकीकत क्या है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही है, वरना उस धोखेबाज लड़की की कोई औकात नहीं है। उसकी औकात कहाँ तक है और वो कहाँ तक जा सकती है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बस एक बार मैं आकांक्षा से उसकी आंखों के सामने शादी कर लूँ, फिर देखना किस तरह उसका सारा घमंड टूटेगा। उसकी जो ये चालें हैं और जितने भी ड्रामे वो कर रही है सब पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, और उस दिन उसका सपना भी पूरी तरह टूट जाएगा। उसका सिर्फ एक ही सपना है, उस ओबेरॉय परिवार को जलील करना, उनसे बदला लेना जिन्होंने उसे कच्ची उम्र में छोड़ दिया था। जन्म देते ही नैना ओबेरॉय ने उसे खुद से दूर कर दिया था और एक मामूली गरीब परिवार में पलने के लिए छोड़ दिया था। यही गुस्सा धीरे धीरे उसके अंदर जन्म लेने लगा था। तुम जानते हो मैंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा उसके साथ बिताया है। उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और शायद उसी ने अपना मासूम, भोला और बिना मिलावट वाला चेहरा मुझे दिखाया था ताकि मैं उसके आकर्षण में पड़ जाऊं और उससे प्यार कर बैठूं। और वाकई ऐसा हो भी गया था। मुझे उसकी खूबसूरती से प्यार नहीं हुआ था बल्कि उसके व्यक्तित्व से प्यार हुआ था। लेकिन असल में वो कितनी शातिर है ये मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब उसकी घटिया चाल बिल्कुल नहीं चलने वाली। बहुत जल्द मैं सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दूंगा, और जब एक बार आकांक्षा और मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद ना तो कोई मल्होत्रा परिवार उसके साथ खड़ा होगा और ना ही आदित्य राणा, जो अभी उसका बॉयफ्रेंड बनकर घूमता है वो भी उसके आसपास नजर आएगा। सिद्धार्थ ने पूरी तरह प्लान बनाते हुए ये बात कही थी। वहीं रणविजय शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा और अगले पल बोला था, आई होप तुम जो कह रहे हो वही सच हो, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी सच नहीं निकला तो याद रखना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ। दादी ने कहा है कि आकांक्षा के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने जाना है और उसे ओबेरॉय मेंशन भी भिजवाना है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे के बाथरूम में चला गया। वहीं रणविजय सोच भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखता रह गया था और मन ही मन बोला था, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सारी चीजें ठीक होते हुए भी कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अगर झलक मल्होत्रा इस तरह से सिद्धार्थ की जिंदगी में वापस आई है और वाकई वो मल्होत्रा परिवार की बेटी है तो वो किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी नहीं होने देगी। चलो देखते हैं, शायद आज ही पता चल जाएगा कि झलक हल्दी के फंक्शन में क्या चाल चल सकती है और क्या करने की कोशिश कर सकती है। अगर झलक ने वाकई हल्दी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने या बर्बाद करने की कोई चाल चलने की कोशिश की तो शायद मुझे भी सिद्धार्थ की बातों पर यकीन हो जाएगा कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी रोकने के लिए आई है। उसके बाद शायद वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगी। खैर ये तो आज रात का हल्दी फंक्शन ही बताएगा। ये सोचकर रणविजय अपना फोन निकालता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह मेंशन के डाइनिंग टेबल पर आदित्य, झलक, अभय, कबीर और साथ ही साथ अनामिका बैठे हुए थे। सभी बच्चे सोकर लेट उठे थे क्योंकि सभी को पता था कि वो लोग लेट नाइट पार्टी करके आए थे, इसलिए स्नेहा जी ने भी किसी को सुबह जल्दी नहीं जगाया था। हालांकि झलक सुबह ही उठ चुकी थी और अपनी ब्लैक कॉफी पहले ही पी चुकी थी, लेकिन वो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। वहीं आदित्य की नजरें बार बार झलक पर जा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और हर कुछ सेकंड बाद वो चोरी छिपे झलक को देख लेता था। दूसरी ओर झलक पूरी तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी उसकी नजर आदित्य से टकराती तो वो तुरंत अपनी नजरें झुका लेती थी। ये देखकर कबीर और अभय के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान आ गई थी, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह समझ रहे थे कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है।